उपदेशामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये दो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। इन किताबों के द्वारा हम ये सब समझते हैं क्या है सही है क्या गलत है। तो भक्ति शास्त्री का भी कोर्स होगा आपके मंदिर में धीरे धीरे। आप में से कोई भक्ति शास्त्री किए हैं इधर? वेरी गुड, वन। कोई और है? माता दो लोग किए हैं, और भविष्य में अरेंज किया जाएगा आपके मंदिर में भी भक्ति शास्त्री जब होता है तब आपको ये सब समझ में आएगा, और भी भगवान के संबंध में भी, और प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से भक्ति को कैसे लागू करना है वो भी समझाया जाएगा उसमें
मॉर्निंग में। तो लाइक वी हैव टू रीड प्रभुपाद बुक्स लाइक भागवतम एंड भगवद गीता एंड महाराज का जैसा गुरु महाराज का लेक्चर भी सुनना रहता है। तो कंपेयर टू द टू लाइक इफ टाइम कम है तो व्हाट इज बेटर लाइक लिसनिंग टू महाराज लेक्चर और रीडिंग प्रभुपाद बुक्स?
देखिए आप कार में जाते समय आते समय आप प्रवचन को डाल सकते हैं, प्रवचन जाते समय आते समय। ऐसे मैंने सुना है लोग सैकड़ों लेक्चर सुन लेते हैं कार में ट्रैवल करते समय ऐसे। और प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ने के लिए कुछ रेगुलेशन चाहिए। अगर हर दिन अगर हम कम से कम 15-20 मिनट भी पढ़ सकते हैं, अगर हर दिन नहीं होता है तो हफ्ते में कितना होता है? अगर एक दिन 20 मिनट है तो 7 दिन कितने होता है?
140 मिनट्स।
सो 140 मिनट मीन्स हाउ मच इट इज? ऑलमोस्ट 2 hours 20 minutes, अढ़ाई घंटा। कम से कम अढ़ाई घंटा 3 घंटा हफ्ते में पढ़ाई होना चाहिए प्रभुपाद जी की किताब। कुछ कुछ लोग एक ही दिन में पढ़ लेते हैं 3 घंटा, कुछ लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं ये प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना किसके बराबर है, ये धान्य खाने के बराबर है। एकादश के दिन हम धान्य खाते नहीं ना, कितना कमजोरी महसूस होता है ना, लेकिन धान्य खाते हैं तो पोषण पुष्टि मिलता है। इस तरह हमारा अनुभव होगा कि अगर हम रेगुलर रूप से नहीं पढ़ते हैं ना, थोड़ा हम माया और प्रबल हो जाती है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में कमजोरी होता है, नाम में रुचि नहीं होता है, धीरे धीरे डिले पड़ जाते हैं। तो हर दिन प्रभुपाद की किताब के टच में आना आवश्यक है। कभी कभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप आते समय जैसे में पढ़ सकते हैं, लंच के टाइम पढ़ सकते हैं थोड़ा। लेकिन एक आइडिया है कि क्यूइंग बोलते हैं, क्यूइंग का मतलब क्या है? लंच प्रसाद के तुरंत बाद 15 मिनट पढ़ना प्रभुपाद की किताब। ऐसे एक आयोजन बना लेना आप, हर दिन मेरा लंच होने के बाद तुरंत मैं 15-20 मिनट पढ़ूंगा, नहीं तो रात को डिनर के बाद 15-20 मिनट पढ़ूंगा, ऐसे कुछ बना लीजिए। तो वो जैसे हम दान सफाई करते हैं नहाते हैं ऐसे वो भी एक आदत पड़ जाएगा वो भी। नहीं तो अलग हम निकलने वाले नहीं है टाइम, मन तो बोलेगा हम तो बहुत बिजी हैं अभी। लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद की सब किताबों को पढ़ लेना चाहिए, छोटे किताब बड़े किताब भगवद गीता भागवतम चरितामृत। मैं बंगलोर गया था उधर एक पति पत्नी थे तो वो माता जी बोल रहे थे कि प्रभु जी हमारे प्रभु जी का इतना 16 घंटे का काम है कंपनी में, बहुत बिजी है, टाइम नहीं मिलता है, तो मंदिर में कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं, वीकेंड में भी बहुत थक जाते हैं क्योंकि 6 दिन काम करना होता है। तो मैं प्रभु जी को देखा कि बहुत कमजोर पड़ गए हैं देखा मैंने, लेकिन प्रभु जी बोले कि प्रभु जी लेकिन हम दोनों एक अच्छा चीज़ कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या? हर दिन कंपनी से आने के बाद रात को एक भगवद गीता श्लोक और तात्पर्य, भागवतम श्लोक एक श्लोक और तात्पर्य, और चैतन्यचरितामृत एक श्लोक और तात्पर्य हर दिन हम पढ़ते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये आदत ये लोग 10-12 साल कर रहे हैं ऐसे, तो ये मैं बोला ये बहुत अच्छा आदत है, करेक्ट है ना, उन्होंने ऐसे आदत बना लिया। तो आप में से कोई भगवद गीता का एक श्लोक और तात्पर्य रोज पढ़ेंगे तो 700 दिन में 2 साल में हो जाएगा गीता पूरा ऐसे। तो ऐसे ही कुछ हम अपने आप के लिए कुछ प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए कि हर दिन हम ऐसे करेंगे। थैंक यू। पढ़ाई भी होता है परीक्षा भी होता है, परीक्षा के लिए लोग अच्छा पढ़ते हैं उस टाइम।
आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस। सुबह ऑफिस पहुँचते ही सबसे पहला काम लैपटॉप स्टार्ट करने के बाद पहला भागवतम का श्रीमद भागवतम का एक पेज पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद फिर आई स्टार्ट माई वर्क। जाने के बाद सीधा पहला लैपटॉप ऑन करते ही आई टेक द बुक स्टार्टेड एंड देन आई डू माय वर्क।
करेक्ट, ये इस तरह जैसे प्रभु जी ने बनाए हैं हम एक आदत बना लेंगे ना, ये अच्छा आदत है, अच्छा हैबिट को कल्टीवेट कर सकते हैं इसे। वेरी गुड, थैंक यू।
मुझे जाप के बारे में थोड़ा पूछना था। जैसे सोलह माला मैं हमेशा करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ पूरी सोलह माला सुबह ही हो जाए, लेकिन कई बार सुबह नहीं हो पाती है। तो जो बची हुई माला है चार पांच माला, फिर रात को मतलब मुझे 9:30-10 के बाद ही टाइम मिलता है, तो उस वक्त बस जस्ट पूरा करना है, इसीलिए वो जो बची हुई माला मैं पूरी करता हूँ। लेकिन मन में बहुत सारे पूरे दिन भर के विचार रहते हैं, ये रहते हैं, तो जरूरी है कि वो पूरे करना है चाहिए या फिर ना करे, क्योंकि नींद भी आती रहती है, दिन भर के पूरे थकावट भी रहती है और दिन भर के पूरे विचार भी रहते हैं। फिर भी जैसे मान लो चार माला रहेगी तो चार माला मैं काउंटिंग पूरा करने के लिए कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मैं फालतू जबरदस्ती कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए ऐसा।
हालांकि वो जबरदस्ती है, फिर भी माला पूरा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कल ये चार माला कर लूंगा तो अगले दिन भी चार माला बच जाता है, तो वो अगले दिन चला जाता है। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, तो परीक्षा हो गया, उसको मुझे मिलने के लिए आया था, बोला कि प्रभु जी हमारा 140 माला बचा है। ऐसे बोला, ऐसे माला छोड़ छोड़ कर इकट्ठा करके रखा है वो, ऐसे हाँ ऐसे हमारा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ना चाहिए ऐसे हाँ। इसलिए इसको इसको काटने के लिए सुविधा क्या है, संडे हाँ, अभी क्या करना चाहिए, शनिवार को रात को लेट हो गया हाँ, तो संडे सुबह भी लेट हो गया, आपको माला बचा है तो संडे दिन में पूरा कर देना चाहिए। और अगले बार क्या करना चाहिए, संडे जल्दी सो जाना चाहिए हाँ। और तो सुबह जो टाइम आप उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी उठने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो रात को जो पिछले दिन जप कर रहे थे वो जप का टाइम बच जाएगा आपको हाँ। इसको अंग्रेजी में विशियस साइकिल बोलते हैं हाँ। विशियस साइकिल का मतलब है एक दिन माला रह गया, रात को लेट हो गया, रात को लेट हो गया, अगले दिन लेट उठे, अगले दिन लेट उठे, माला रह गया, ऐसे ही माला रह जाता है। लेकिन हम संडे को क्या कर सकते हैं, सब जो बचा है उसको पूरा करके मंडे से लेकर जल्दी उठकर पूरा करने के लिए ट्राई करना चाहिए। गृहस्थ भक्तों को कम से कम 12 माला पूरा होना चाहिए सुबह, खास करके ऑफिस जाने वाले भक्तों को। अगर 2-3-4 माला बचा है तो शाम को कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है क्वालिटी बहुत खराब है उसका। शाम की माला नाम के लिए कर लेते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत ये हो जाता है। तो माला सुबह भी कुछ लोग कर लेते हैं, कितने लोग आप में से 16 माला कर लेते हैं सुबह ऑफिस जाने के पहले? माताएं कर लेती है क्योंकि घर में रहती है माताएं हाँ। प्रभु जी हमें, वेरी गुड, 10-12 लग, बहुत अच्छा। तो कुछ कुछ लोगों का ऐसे आदत है कि हम पूरा माला करने के बाद ही हम प्रसाद खाएंगे, ऐसे कुछ लोग हैं हाँ। लेकिन बहुत कठिन शर्त है वो, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं सुबह 9 बजे के पहले ट्राई करने के लिए हाँ। ट्राई कीजिए, कलयुग का जमाने में बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है हाँ। जितना माला हो सकता है उतना ट्राई कीजिए आप हाँ। तो पिछले 2 दिन मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा इधर भक्तों के संग में। वैष्णवों का संग ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बेंट है हमारे जीवन में। पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिं प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यां पुने उपयामि सृष्टिं सर्वत्र मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। ये परीक्षित महाराज बताते हैं, हे भगवान आपके लिए अनन्य भक्ति प्राप्त हो और सब जीवराशियों की ओर मैत्री बढ़े और भगवान के वैष्णव भक्तों की संग मुझे प्राप्त हो जिसमें मैं हमेशा आपका स्मरण चिंतन में कर सकता हूँ। ऐसे 3 चीज मांगते हैं हाँ? भगवान की अनन्य भक्ति, सब जीवराशियों की ओर मैत्री और भगवान के भक्तों की दिव्य संग जब हमें प्राप्त होगा, हम जीवन में हम चरम लक्ष्य जो है कृष्ण की सेवा, ये हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस बार मैं मिशनरी स्पिरिट के संबंध में, जीवदया में, मैं ज़्यादा आपको प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोल नहीं पाया आज समय के अभाव के कारण, लेकिन भविष्य में आते समय एक बार हम चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु भजनानंदी भी हैं, गोष्ठानंदी भी हैं हाँ। प्रभुपाद जी भी भजन भी किया, प्रचार भी किया उन्होंने। इस तरह हम लोग भी भजन भी करना चाहिए, ट्रेनिंग भी लेना चाहिए, लेकिन प्रचार भी करना चाहिए, संस्था को बढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों की भक्ति वृक्ष के द्वारा पिछले 2 साल में मैंने सुना भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गया है, 300-400 कम्युनिटी में भक्त जुड़े हैं। आप लोग इस भक्ति वृक्ष को और बढ़ाते रहिए हाँ। खुद की भक्ति को सुरक्षित रखना और दुखी जीवों को कृष्ण को प्रदान करके उनको कृष्ण से जोड़ना हाँ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और आप सबसे हम याचना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने जीवन में इन सब अच्छी चीज जो मैं आपको बताया प्रवचन में, इसको लागू करने के लिए हमें शक्ति प्राप्त हो. क्योंकि गुरुजन, गुरु परंपरा और वैष्णव जनों की आशीर्वाद से ही भगवान खुश होते हैं. जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी हमारे अंदर सब कल्याणमय दिव्य गुण हमारे अंदर प्रकट होता है.